प्रातः क्लास चल रहा था, उन्नीस आठ चौसठ बुधवार, छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में हेवनली गॉड फादर का मंदिर कितना बड़ा बना हुआ था। सो मंदिर का नाम क्या था? सोमनाथ मंदिर। किसका नाथ? सोम अर्थात चंद्रमा। कब नाथा होगा? चंद्रमा कहो, ब्रह्मा कहो, कृष्ण की आत्मा कहो, जो अपन को 2500 साल से भगवान माने बैठी है, उसको कब नाथा था? जो नाम पड़ा सोमनाथ, नाथ स्वामी को भी कहा जाता है। वो हमको सिखलाते हैं, जिस शीशी की मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, कैसे श्रेष्ठ बनते हैं बैठ करके समझो। कौन सिखलाते हैं? सोमनाथ। और इशारे से समझ जाओ कि हमारी मेडिटेशन कितनी सहज है। बाप को याद करना और सारी रचना के आदि मध्यंत को जान जाते। और तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं। तुम जाकर के कोई को भी पूछो, षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है, वो तो कुछ भी नहीं जानते। पहले तो सत्यु की आए हो, तुमको ऐसी बता देंगे जो घूमते फिरो। बाबा कहते हैं, जबकि तुम रात को बैठते हो, यही याद तुम करते हो, बिल्कुल यही याद करते हो कि रचयिता और रचना का डिटेल क्या है। सबको कह सकते हो, ये तो पुरानी दुनिया है ना, नई दुनिया थी। अभी इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है, जिसको ओल्ड वर्ल्ड कहेंगे। कलयुग को कोई न्यू वर्ल्ड तो नहीं कहेंगे। न्यू वर्ल्ड जब होगी तो उस न्यू वर्ल्ड सत्युग में तो दैवी गुण वाले मनुष्य थे ना। मनुष्य सत्युग में तो न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग कहेंगे ना। उन्नीस आठ चौसठ की वाणी का सातवां पेज देखो। जो नया महल है तो उनको हम कहते हैं स्वर्ग, पीछे वो गंदा हो जाता है। जड़ा जड़ ही भूत हो जाते हैं, तो उनको हम कह देते हैं नरक। अर्थात स्वयं स्थिति में टिकने वालों का स्वर्ग और नर मनुष्य को कहा जाता है, जिसका मन चलायमान होता है। मनुष्य जो दुनिया बनाते हैं उसे नरक कहा जाता है। नरक ही बनाई हुई दुनिया नरक है। तो अभी हम इस सारी दुनिया को नरक कहते हैं। घर घर में नरक है, बल्कि कहो सारी दुनिया में नरक है, क्योंकि घर घर में अशांति है, झगड़ा, मारामारी, गंध, विकार, वो सभी है, क्योंकि है जंगल। इस जंगल में जंगली जानवरों से भी बदतर रहते हैं। उस जंगल को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। कांटे क्या करते हैं? कांटे तो दुख ही देते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स अंग्रेजी में लिखते हैं ना, क्या मतलब? क्योंकि जब अंग्रेजों का इस दुनिया में राज होता है तो घर घर में कांटों का जंगल हो जाता है। ये एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। कैसे है? एक को डाइवोर्स देंगे, दो को देंगे, तीसरे को देंगे, चौथे को देंगे, दुख तो होता है ना। वो बाप आकर के फिर गार्डन ऑफ अल्लाह स्थापन करती है। वो बाप, ये नहीं, वो मुसलमान लोग भी जानते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। गॉड भगवान आकर के बहिष्ट स्थापन करते हैं। बहिष्ट तो अभी है ही नहीं, कांटों का जंगल तो है ना। तो तुम बच्चों को मालूम हो गया कि किसको कांटों का जंगल कहा जाता है? यहाँ सब एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। काहे का कांटा? काम विकार का कांटा लगाते रहते हैं, उसको कांटों का जंगल कहा जाता है। फिर किसको फूलों का गार्डन कहा जाता है? जानते हो अभी तुम कांटों से देवी फूल बन रहे हो। तो इस बात का चिंतन चलना चाहिए ना। दिन में भी रात में तुम नॉलेज लेते हो, दिन में याद नहीं पड़ता है तो रात को बैठ करके यही नॉलेज याद करो। बाबा में भी यही नॉलेज है और बच्चों में भी यही नॉलेज है। जो रात को भी तुम बैठो बड़ा मजा आएगा। ऐसे कोई आवे हमारे पास तो हम ऐसे समझाऊंगा, क्योंकि सेवा करने वालों को तो यही बुद्धि में रहेगा, क्योंकि दुनिया में और तो कोई बेचारे जानते ही नहीं है। हमको ही तरस पड़ता है, मनुष्य हो करके अगर इस रचयिता और रचना की आद मध्यंत को न जाने तो वो किस काम का। मनुष्य कहते हैं ना ओ गॉड फादर, और ये गॉड फादर जो रचयिता है उनकी रचना के आद मध्यंत को हम नहीं जानते हैं। ये बच्चे हैं, या कौन है, उल्लू है, पाजी है, कौन है? देखो तो हम कैसे बन जाते हैं। इसको उल्लू कहा जाता है ना, हम अभी उल्लू के बच्चे, फिर अभी हम अल्लाह के बच्चे। डॉग से गॉड बन जाते, कितना फर्क रहता है। परंतु वो नशा तो होना चाहिए ना, समझाने का नशा होता है ना। अगर कोई कहेगा कि मुझ में ज्ञान है और कोई को नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना बच्चे ये है अविनाशी ज्ञान रतन। अगर अविनाशी ज्ञान रतन है तो जरूर दान करना चाहिए। अभी तुम जानते हो कि जितने जो दानी पुरुष हैं उनकी महिमा बहुत होती है। फिलैंथ्रोपिस्ट, अरे बहुत अखबारों में उनका नाम पड़ता आया है। इतना मंदिर बनाया, इतना कॉलेज बनाए, इतने हॉस्पिटल बनाई, नाम जाता है तो अखबारों में लिखते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी बहुत दान करते हैं। रिलीजियस माइंडेड वाले ही जास्ती दान करते हैं। जो इररिलीजियस होते हैं वो नहीं दान करेंगे। तुम तो हो इरिलीजियस माइंडेड और तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रतन है। अब ये तो तुम बच्चे समझते हो, ऐसे तो नहीं हो कि मंद बुद्धि हो, मूढ़ बुद्धि हो। समझते हो कि जो जो जितना जिसके पास धन है वो इतना इतना ही दान करेंगे। जिसके पास दान कमती होगा तो कमती दान करेगा, और नहीं होगा तो कुछ भी दान नहीं करेगा। फिर उनको क्या मिलेगा? न दान लेता है न देता है, तो फिर बाकी वो क्या हुआ? बिल्कुल कुछ काम का नहीं रहा। तो दान भी तो जरूर देना है, दान नहीं देंगे ये गीता ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो और कौन सच्ची गीता सुनाएंगे? तो धारणा चाहिए, और ये धारणा भी कितनी सहज है, अति सहज। इसको भी बैठ करके समझाना, जैसे बाबा समझाते हैं कि हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, ये दुनिया का चक्कर है, ऐसे ऐसे चलता है, उन्नीस आठ चौसठ की वाणी का आठवां पेज। ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में तो देवी देवताओं का राज्य था, और तो कोई धर्म नहीं था। पीछे वो धर्म आए, ये आया और वो आया। जब बरोबर इस्लाम धर्म था तो बौद्ध ही था ही नहीं, बौद्ध ही था, क्रिश्चियन था ही नहीं। और जब क्रिश्चियन से थे, क्राइस्ट आया, तो फिर ये मठ पंथ सन्यासी वन्यासी पूछड़ी पूछड़ी वाले, ये पिछाड़ी की बिरादरी थी ही नहीं। क्योंकि पीछे बिरादरी सतो प्रधान से कमती होती जाती है ना, कि तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। जो फोर्थ से कोई भी अच्छा आवे तो उनको आकर के समझा भी, या मनुष्यों को मेडिटेशन अथवा योग का बहुत शौक है, उनको ये भी बैठ करके समझावे कि चलो आकर के हमारा मेडिटेशन हाल देखो। मेडिटेशन हाल देखने से बड़े खुश होते हैं, समझेंगे ये रिलीजियस माइंडेड है, ये भगवान की बंदगी करने वाले हैं, जरूर ये इतने पापात्मा नहीं होंगे। और रिलीजियस माइंडेड कहा ही उनको जाता है जो पाप नहीं करते होंगे। परंतु आज की दुनिया में तो बहुत जो रिलीजियस माइंडेड हैं वो बहुत पाप करते हैं। ये बड़ी समझ की बातें हैं, और इनको समझने में कोई बड़ी मेहनत भी नहीं है। बाप को याद करना और रचना को याद करना, इसमें मेहनत क्या है? और सबको समझाना है, जैसे बाबा ने समझाया है कि हम ऐसे मेडिटेशन में ये याद में बैठते हैं, योग माना ही याद, और तो मनुष्यों को पता नहीं किस किस को याद करते हैं। हमको तो सिखलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, वो परमपिता परमात्मा निराकार हमारा बाप है और हम आत्मा हैं। उस बाप को कहा ही जाता है पतित पावन गॉड फादर, वो ही हमको राजयोग सिखलाते हैं। वो हमको ऐसे कहते हैं वो हमको ऐसे ऐसे सिखलाते हैं। अब तुम सीखो या न सीखो, बाकी हम सबकी तो एक मत है। श्री बनने के लिए हम श्री श्री से मत ले रहे हैं। अभी देखो, श्री का एम ऑब्जेक्ट ये है, बरोबर इस समय में बहुत झगड़ा आता है, एकदम बहुत मनुष्य है, और जब इनका राज्य है तो राज्य तो बहुत थोड़ा होगा। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, पीछे कैसे वृद्धि को पाते जाते हैं। और तुम तो हरेक चैतन्य बीज रूप हो गए, एकदम नॉलेज फुल, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही कहा जाता है ना। से बाप ये जानता है जरूर कि बीज रूप है, जैसे जड़ बीज होते हैं तो उनको झाड़ का नॉलेज होना चाहिए, परंतु उनकी नॉलेज भी हमको है। इस दुनिया में तो अपने झाड़ की नॉलेज नहीं है कोई को, साधु संत महात्मा किसको भी नॉलेज नहीं है। मेडिटेशन का भी तुमको युक्ति से समझाना चाहिए, वो कैसे अनेक मत वाले हैं और हम एक मत हैं। अच्छा, तुमको बहुत समझाया, समझाना तो मिनट मिनट भी है, एक मिनट भी बस है, बाकी तुम बच्चे भी मेडिटेशन में रात को भी बैठेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि तुमको दूसरों को भी सिखलाना है। तो जितना तुम बाप को याद करेंगे इतना तुम्हारे पास धन जास्ती होता जाएगा। कैसे? याद करने से धन कैसे बढ़ेगा है? बाप को याद करेंगे, बाप है अति सूक्ष्म, जैसे को याद करेंगे बुद्धि भी सूक्ष्म ही बनेगी, और सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान जास्ती ठहरेगा, मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। तो जितना तुम सर्विस करेंगे कितना धन तुम्हारे पास वृद्धि को पाता जाएगा। गाया जाता है धन दिए धन ना कूटे, मनुष्य दान क्यों करते हैं? समझते हैं कि दान करने से हमको प्राप्ति होगी, परंतु ये साधु संत के पिछाड़ी क्यों लटक मरते हैं? धन मिलता जाता है तो समझते हैं साधु की कृपा है, इसलिए उनको भी दान करते रहते हैं। अब दान करते हैं तो उनका फल उनको जरूर मिलता है, ऐसे नहीं है कि कोई को निष्काम सेवा करते हैं जो उनको फल न मिले। मनुष्य को फल जरूर मिलता है, निष्काम सेवादारी दुनिया में कोई होता नहीं, निष्काम सेवादारी गॉड इज वन। और निष्काम सेवा करने वाला भी एक है, जिसको तुम समझ सकते हो। दुनिया वाले तो पहचानेंगे भी नहीं। वो ब्रह्म ब्रह्म तो नहीं कुछ आकर के समझाएंगे, साठ चौसठ की वाणी का नौवां पेज देखो। बाप आकर के समझाते हैं कि मैं कैसे निष्कामी हूं। इस दुनिया की कोई भी कामना नहीं है, और आने वाली दुनिया में भी कोई भी पद मान मर्तबे की कामना नहीं है। ब्रह्म कैसे समझाएंगे, या वो तत्व कैसे समझाएंगे? ये बाप खुद आकर के समझाते हैं कि मैं निष्कामी हूं। आकर के तुम्हारी सेवा करके निर्वाण धाम चला जाता हूं, जैसे वो लौकिक बाप करते हैं, सेवा करके उन बच्चों को सब कुछ दे करके। फिर वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, बाद में लोग समझते हैं कि वो तो निर्वाण धाम चला गया, परंतु वो चले नहीं जाते हैं। अगर वो दे करके चले जाएं तो निष्कामी हो गए, परंतु ये बाबा तो तुमको दे करके निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। बोलते हैं मैं तुमको गद्दियों पर राजभाग दे करके फिर जाकर के निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। कोई मनुष्य ऐसे थोड़े ही कर सकते हैं। वास्ट डिफरेंस है। अच्छा अभी टोली खिलाओ, समझते हो कि बागवान माली वगैरह ये है, देखता है कि हमारे फूल कैसे हैं, कैसे उन्नति को पाते हैं। पानी तो इनको देता रहता हूं, योग भी सिखलाता रहता हूं, यही पुरुषार्थ करना है। कोई जड़ तो नहीं है जिनको हम पानी देंगे? ये भी जानता हूं कि ये फूल किस प्रकार का है, ये कली किस प्रकार की है, और ये कांटा किस प्रकार का है। तुम ऐसे नहीं समझना कि यहां कोई कांटे नहीं है। यहां भी बड़े बड़े कांटे हैं, इनहेरिटेंस मिलना है गॉडफादर से। क्राइस्ट को इनहेरिटेंस अभी मिलेगा, का इनहेरिटेंस मिलेगा, उनको इनहेरिटेंस मिलेगा अपना धर्म स्थापन करने का। ये पीछे पोप बनेंगे। क्राइस्ट जब स्थापना करते हैं तो पीछे पोप द फर्स्ट जाकर के बनते हैं। फिर नंबर बार जो भी उनको सहयोग देते हैं वो पोप सेकंड थर्ड फोर्थ बनते जाते हैं। जैसे ये है जो मेहनत करते हैं तो जरूर पहले नंबर में जाएंगे ना। तो क्राइस्ट दूसरे जन्म में क्या लेगा? वो तो समझते हैं क्राइस्ट की सोल लीन हो गई, हेवन में चला गया, वो तो ऐसे ही कहेंगे। नहीं, बोलो, क्राइस्ट जिसने धर्म की स्थापना की, उस धर्म की पालना के लिए भी तो गुरु चाहिए ना। तो ये पोप लोग इन क्रिश्चियंस के बड़े गुरु हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारी पालना करने वाले हैं, वैसे वो भी हैं। तो वो जाकर के पोप द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड बनते हैं। अभी कहते हैं क्राइस्ट कहाँ है? कहेंगे वो एक बैगर के पार्ट में है। क्राइस्ट किसको फॉलो करता है? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, जरूर कृष्ण को फॉलो किया है। कृष्ण की आत्मा और उसके फॉलोअर्स अंतिम जन्म में बैगर बन जाते हैं। भले बाप कहते हैं मांगने से मरना भला, तुम बच्चे अखबारें नहीं पढ़ते हो, उनको मालूम है कि अभी जैसे बैगर के पार्ट में है यानी गरीब है, खड़ा होकर के क्या देखते हो? अरे क्यों, ये भी समझते हो कि मैं फुलवारी को देखूंगा? याद आता है कि फलाना फूल है, तो कभी कभी तो खड़ा होकर के देखता हूं। अभी समझा? ये बड़ा अच्छा मेरा फूल है, और भी कितने अच्छे फूल हैं। वो अच्छे अच्छे फूल कितने मददगार हैं। अच्छा, माता पिता का और बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। or good morning? Mata pita aur baap dada alag alag kyon bola? Baap dada combined part hai. एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं, एक बाप है, एक बड़ा भाई है, इसे दादा कहा जाता है। बाप बड़ा या दादा बड़ा? तो बाप शब्द पहले और दादा शब्द बाद में। कौन हुआ बाप और कौन हुआ दादा? जो एक ही शरीर में कंबाइंड होकर पार्ट बजाते हैं, कहेंगे दादा जो कृष्ण वाली आत्मा है, जो सच्चे रूपी रंगमंच पर पहले पहले जन्म लेती है, वो हमारा दादा है। और उसे कृष्ण को जन्म देने वाला सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाप है। ये हुआ बाप दादा। बाकी माता पिता कौन? शिव को पिता कहें, परंतु वो माता तो नहीं है। शिव के साथ तो हम बच्चों का एक ही संबंध है, क्या? बाप और बच्चे का, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब शरीर में प्रवेश करते हैं, तो पहले पहले जिस शरीर में आकर के ज्ञान का बीज बोया, वो हुआ बाप। और बाप क्या पार्ट बजाता है? माता क्या पार्ट बजाती है? माता घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। तो ये जो भी विदेश है, जो भी विधर्मी है, उन सब का बाप है एक। और बाप के साथ माता भी चाहिए। जो घर अर्थात भारत देश को संभाले, इसलिए ब्रह्मा का पार्ट कहाँ चला? जब तक जीवित रहे है, विदेशों में कोई सेंटर खुला है? नहीं खुला। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, भारत में ही पार्ट बजाया, भारतवासी बच्चों की ही संभाल की। तो वो हो गई माता। और बच्चे भी पहले किसको पहचानते हैं? तो जो भी ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए, उन्होंने माता को पहले पहचाना। फिर माता के मुख से निकली हुई वाणी ने बाप का परिचय दिया। अच्छा, ओम शांति। बाप कहते हैं कि बाप के सिवाय और कोई भी राजयोग नहीं सिखला सकता, क्योंकि राजा ही तो सिर्फ बाप ही देते हैं, भगवान वाच। और भगवान हम मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। क्या कहा? प्रजापिता भी क्या है? मनुष्य है, मननात मनुष्य है। जिसका मन चलायमान होता है, मन चलता है, वो क्या है? मनुष्य है। तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ये लोग कहते हैं कृष्ण भगवान। अब कृष्ण नई दुनिया का सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता है, कलाओं में बंधा हुआ है कि कलातीत है, घटती बढ़ती कलाएं तो मनुष्य आत्माओं की होती है। मनुष्य की कलाएं बढ़ती हैं तो देवता बन जाते हैं, मनुष्य की कलाएं घटती हैं तो राक्षस बन जाते हैं। तो कृष्ण भगवान नहीं हो सकता। कृष्ण तो है देवता का नाम है, बिल्कुल नहीं बन सकता। सबका भगवान तो एक होना चाहिए कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, हनुमान भी भगवान, गणेश भी भगवान, ढेर के ढेर भगवान। वो कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। न कोई ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर हो सकते हैं। है? अरे शंकर भी भगवान नहीं हो सकता है। जब बाबा शंकर कहते हैं तो इशारा किस तरफ होता है? है? शंकर कहा माना उसमें राम की आत्मा भी कार्य करती है, उसमें कृष्ण की आत्मा भी है और उसमें शिव की आत्मा भी है। तो ये तीन हो गए कि एक हुआ? ये तो तीन हो गए। तो न कोई क्राइस्ट हो सकता है, न कोई वगैरह वगैरह। भगवान तो सबका एक ही है और वो ही पतित पावन है, वो ही हेवनली गॉड फादर है। क्यों? हेल गॉड फादर क्यों नहीं है? अरे हेड गॉड फादर कौन और हेवनली गॉड फादर कौन? हेवन स्थापन करने वाला सिर्फ है एक ही शिव बाबा है, बाकी तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा आदि सब आया राम गया राम। स्वर्ग तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। तो जबकि स्थापन करना है, हेवन स्थापन करना है, किसको हेवन स्थापन करना है? हेवन किसको बनाना है? नरक को आकर हेवन बनाते हैं तो कहां आना पड़े? हैं? ऐसे नहीं वहां बैठे बैठे ही बन जाएगा। या जैसे वो बीके वाले कहते हैं, क्या वो आता है ब्रह्मा के तन में और ज्ञान सुनाकर चला जाता है और हेवन हेवन हम बनाएंगे? बरोबर। वो बेहद का बाप भारत में आते हैं। क्यों? भारत ही नाम क्यों दिया?
भारत
भारत का ही नाम क्यों लिया, और का नाम क्यों नहीं? क्यों? भा माने रोशनी, जो ज्ञान की रोशनी में रत रहता है माना लगा रहता है, क्या और उसका कोई जन्म जन्मांतर का धंधा भी नहीं है। अगर और द्वापर कलयुग के जन्मों में रहता है तो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, या धनी दुनियावी धंधा दोरी में लगा रहता है? ज्ञान की रोशनी भी एक वाचा की होती है, एक शास्त्रों की लिखा पट्टी होती है, और एक शास्त्रों में जो बोला हुआ है उस बोले हुए को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर दिखाने की बात होती है। असली ज्ञान कौन सा हुआ? जैसे मुरली में भी ज्ञान है, बीके वाले मुरली सुनाते हैं, अर्थ नहीं जानते। एडवांस वाले मुरली के माँ बाप के भी सुनाते हैं और अर्थ भी बताते हैं, अर्थ की गहराई में भी भावार्थ भी समझते हैं और समझाते हैं। फिर उससे सिर्फ वाचा में आने से क्या काम बन जाता है? है नहीं, ब्रह्मा का पार्ट है वाचा में आने का, सुनना और सुनाना। और ब्रह्मा कुमार कुमारों का भी यही पार्ट है, क्या छोटे बच्चों की तरह सिर्फ सुनते हैं और सुनाते हैं, अर्थ की गहराई को नहीं समझते हैं। और दूसरे हैं जो सुनते सुनाते भी हैं ईश्वरीय महावाक्यों को, वेद वाक्यों को, जो वेद ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं उनके अर्थ की गहराई को भी जानते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। लेकिन सुनने सुनाने समझने समझाने से कोई देवता नहीं बन सकता, क्या करने से बनेगा? प्रैक्टिकल जीवन में भी आना पड़े। तो तीसरा पार्ट है प्रैक्टिकल पार्ट, कौन सा? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी विष्णु देवता क्यों नहीं, देवी क्यों? क्योंकि कन्याएं माता ही स्वर्ग का द्वार अपने प्रैक्टिकल जीवन से खोल सकती हैं, पुरुष नहीं खोल सकते। इसलिए बोला कि उनको आना ही है भारत में। क्यों? जो प्रैक्टिकल जीवन बनाने वाला है विष्णु का पार्ट है उसमें क्यों नहीं आना है? है या कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा में क्यों नहीं आना है? है क्योंकि गीता में भी कहा है इंद्रियाणि पराण्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं और इंद्रियों से भी जास्ती मन प्रबल है। तो मन का पार्ट किसका है? ब्रह्मा का पार्ट मन का है। मनसास्तु परा बुद्धि, और मन से भी बुद्धि परे है, प्रबल है। तो बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र वो किसका पार्ट है? शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तुम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, त्रिनेत्री बाप के त्रिनेत्री बच्चे हो, तो शिव बाप किस में आवे, विष्णु में क्यों नहीं आवे? है अरे विष्णु तो पवित्र होता है, पवित्र में बाप नहीं आते हैं। तो बताया भक्ति मार्ग में उनका मंदिर कितना बड़ा बना हुआ है। उनका क्यों कहा, कहने वाला कौन है? ब्रह्मा कहने वाला है, ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है, ब्रह्मा के मुख से शिव ने, बाबा ने नहीं, शिव की आत्मा ने बोला। क्या बोला? भक्ति मार्ग में इनका नहीं, मेरा नहीं, उनका बड़ा, कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो उनका कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो तीसरी आत्मा है, ब्रह्मा की आत्मा भी नहीं है, जिसको उनका कह के संबोधित किया, और शिव की आत्मा भी नहीं है, वो तो अलग पार्ट है। बोला जिनका यादगार मंदिर बना हुआ है, उसमें क्या यादगार है? लिंग बना हुआ था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। लिंग किस बात की यादगार है? लिंग है साकार की यादगार, जिसमें हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। इंद्रियां दिखाई जाती हैं क्या? नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि जो आत्माएं निराकारी स्टेज प्राप्त करती हैं, उनको इंद्रियों का भान भूल जाता है। तो उनका सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। किसका नाथ? सोम माने क्या? चंद्रमा कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा का नाथ क्यों बताया? मुरली में तो पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, तो कोई बताता ही नहीं, सुन लेते हैं। अब पूछते हैं तो बताना भी चाहिए ना। ब्रह्मा को किसने पैदा किया, कहां से आया है, कौन है ब्रह्मा, अर्थात सोम का नाथ कौन है, जो मनरूपी बैल कहो, मनरूपी घोड़ा कहो, उस घोड़े के भी नाक में नकेल डाल देता है, उसके ऊपर सवार हो जाता है। तो देखो कैसा अच्छा ज्ञान है। क्या शिव आते हैं शंकर में, और शंकर शंकर पर शिव की सवारी है, इसलिए सोमनाथ के मंदिर में लिंग में हीरा जड़ा हुआ था, बिंदु की यादगार, और वो लिंग रूप में पूजा जाने वाला जो साकार शरीर की यादगार है, निराकारी स्टेज वाला, वो बैल पर सवार दिखाया जाता है। बैल भी दो प्रकार के होते हैं, एक अड़ियल बैल होता है जो बच्चे पैदा करता है, और एक खेती वाला बैल होता है
وہ کھیتی کرتا ہے لیکن بچے نہیں پیدا کرتا. بھارت میں جب کانگریس بنی تھی تو ان کی کیا نشانی تھی؟ دو بیلوں کی جوڑی, ایک رائٹیس ایک لیفٹسٹ. رائٹیس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ چلاتے ہیں تو رائٹیس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اور لیفٹسٹ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کچھ ہے؟ نہیں معلوم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جب گاڑی چلاتے ہیں, دو بیلوں کی گاڑی چلاتے ہیں تو رائٹیس بیل کی لگام پکڑ کے کہتے ہیں آ آ آ آ, تو وہ گھوم پڑتا ہے. اور جب لیفٹسٹ بیل کی لگام پکڑ کے چلاتے ہیں تو کہتے ہیں تک 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 تک. اب تک تک کرنے سے کچھ ہوگا کیا؟ ہے ہوتا ہے نہیں. اس لیے ابھیکت وانی میں باپ دادا نے کیا بولا؟ بہت تک 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 کرتے تھک جاتا ہے تو بابا کیا بولتے ہیں؟ ارے کتنے پرشنوتروں کی جڑی لگ جاتی ہے. بابا کہتے ہیں یہ راون کے سر ہیں, جتنے کاٹتے جاتے اتنے نکلتے جاتے. تو سر کاٹتے کاٹتے تھک جاتے ہیں تو اب تک باپ دادا نے کیا اشارہ دیا؟ ہاں وجے مالا کا آواہن کرو. وجے مالا کا آواہن کریں گے تو پروتی کی گانٹھ بند جائے گی. پروتی سے فائدہ ہوتا ہے یا نوتی سے فائدہ ہوتا ہے؟ پروتی سے فائدہ ہوگا. دیوتائیں ہوتے ہی ہیں پروتی مارگ والے, باپ آتے ہی ہیں پروتی مارگ کی رچنا کرنے کے لیے. تو بتایا ان کا مندر کتنا بڑا بنا ہوا ہے. اوم شانتی.